नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। आर्थर सी ब्रुक्स की पुस्तक लव योर एनिमीज अमेरिका की राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण पर केंद्रित एक विचारपरक गैर कथा कृति है। ब्रुक्स, जो सामाजिक वैज्ञानिक और सार्वजनिक नेतृत्व के अध्येता हैं, तर्क देते हैं कि मतभेद अपने आप में लोकतंत्र की विफलता नहीं है। वास्तविक संकट वह तिरस्कार है जिसमें लोग विरोधी विचार रखने वालों को केवल गलत नहीं बल्कि नैतिक रूप से घटिया या घृणा योग्य मानने लगते हैं। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को निष्क्रिय सहिष्णुता या सतही शिष्टाचार तक सीमित रखना नहीं है। इसके बजाय यह विरोधियों के प्रति सम्मानजनक और रचनात्मक व्यवहार को प्रेम का व्यावहारिक रूप मानती है। ब्रुक्स व्यवहार विज्ञान नैतिक परंपराओं और सार्वजनिक जीवन के अनुभव के सहारे बताते हैं कि आक्रोश, अपमान और ऑनलाइन उकसावे से तत्काल ध्यान मिल सकता है, पर स्थायी प्रभाव या सामाजिक सुधार नहीं। यह पुस्तक अमेरिकी संदर्भ में लिखी गई है, फिर भी इसका केंद्रीय प्रश्न हर उस समाज के लिए प्रासंगिक है जहां सार्वजनिक बहस पहचान, क्रोध और विरोधी खेमों की भाषा में सिमट रही है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, तिरस्कार को क्रोध से अलग समझना सामाजिक विभाजन की कुंजी है। ब्रुक्स का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक भेद क्रोध और तिरस्कार के बीच है। क्रोध किसी अन्याय, हानि या निराशा के प्रति प्रतिक्रिया हो सकता है और सीमित रूप में वह समस्या की ओर ध्यान भी खींच सकता है। तिरस्कार इससे आगे जाता है। इसमें व्यक्ति अपने विरोधी को केवल गलत विचार वाला नागरिक नहीं मानता बल्कि उसे नीचे दर्जे का मूर्ख, दुष्ट या सम्मान के अयोग्य समझने लगता है। इस दृष्टि से बहस मुद्दों के बारे में नहीं रहती बल्कि लोगों की मानवीय हैसियत पर हमला बन जाती है। ब्रुक्स के लिए यही संस्कृति का सबसे विनाशकारी तत्व है क्योंकि यह संवाद की न्यूनतम शर्त दूसरे पक्ष की गरिमा को नष्ट कर देता है। पुस्तक यह भी संकेत करती है कि मीडिया, राजनीतिक संदेश और डिजिटल मंच अक्सर आक्रोश को लाभकारी वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वातावरण में तिरस्कार तीखी भाषा, व्यंग्य और सार्वजनिक अपमान के रूप में सामान्य दिखने लगता है। ब्रुक्स का निदान यह नहीं कि नागरिक अन्याय पर चुप रहें, उनका आग्रह है कि दृढ़ असहमति और व्यक्ति के प्रति अपमान को अलग रखा जाए। यह अंतर समझे बिना लोग अपनी नैतिक प्रतिबद्धता को भी विरोधियों को नीचा दिखाने के औचित्य में बदल सकते हैं। दूसरा, मतभेद को समाप्त करने के बजाय उत्कृष्ट बहस की शर्त मानना। पुस्तक उस लोकप्रिय धारणा को चुनौती देती है कि राष्ट्रीय एकता के लिए लोगों को अधिक सहमत होना चाहिए। ब्रुक्स के अनुसार, जटिल समाज में हर बड़े प्रश्न पर एक रूपता न तो संभव है और न उपयोगी। आर्थिक नीति, संस्कृति, अधिकारों और राज्य की भूमिका जैसे विषयों पर अलग दृष्टिकोण अनुभव, मूल्य और प्राथमिकताओं के वास्तविक अंतर से पैदा होते हैं। इन मतभेदों को दबाने से बेहतर समाधान नहीं निकलता बल्कि प्रायः सतही सहमति और अनकहा असंतोष बनता है। ब्रुक्स सहमति को उत्कृष्टता की एक शर्त के रूप में देखते हैं क्योंकि अलग विचारधारणाओं की परीक्षा लेते हैं और कमजोर तर्कों को चुनौती देते हैं। लेकिन यह लाभ तभी मिलता है जब विवाद का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को हराना भर नहीं बल्कि समस्या को अधिक स्पष्टता से समझना हो। इसलिए पुस्तक नर्म, अस्पष्ट मध्यम मार्ग को अनिवार्य आदर्श नहीं बनाती। पाठक अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रह सकता है, कठिन प्रश्न उठा सकता है और हानिकारक नीतियों का विरोध कर सकता है। फर्क व्यवहार की पद्धति में है। विरोधी को अपमानित करने, उसकी हर मंशा को बुरी मानने और उसके समर्थकों को एक जैसा समझने से संवाद बंद होता है। सम्मानजनक असहमति, इसके विपरीत विचारों की कठोर जांच और संबंधों की बुनियादी सुरक्षा दोनों को संभव बनाती है। तीसरा, शत्रु से प्रेम का अर्थ भावुक सहमति नहीं, चुना हुआ व्यवहार है। लव योर एनिमीज का शीर्षक जानबूझकर असुविधाजनक मांग रखता है, लेकिन ब्रुक्स प्रेम को निजी पसंद, आत्मसमर्पण या वैचारिक समझौते के अर्थ में नहीं लेते। उनका जोर इस बात पर है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं से अधिक अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। कोई व्यक्ति विरोधी के विचारों से तीव्र असहमति रख सकता है, उसके प्रस्तावों का संगठित प्रतिरोध कर सकता है, फिर भी उसे अपमानित करने या अमानवीय बनाने से इनकार कर सकता है। इस अर्थ में प्रेम एक अनुशासन है जिसमें दूसरे की गरिमा को स्वीकारना और उसके साथ न्यायपूर्ण ढंग से पेश आना शामिल है। ब्रुक्स शिष्टाचार और सहिष्णुता को भी अपर्याप्त मानते हैं। शिष्टाचार केवल बाहरी विनम्रता हो सकता है, जबकि सहिष्णुता में कभी कभी यह भाव छिपा होता है कि दूसरे को अनिच्छा से सहा जा रहा है। प्रेम का मानक अधिक सक्रिय है, वह सुनने, प्रतिपक्ष के तर्क को निष्पक्ष रूप में समझने और साझा नागरिकता को याद रखने की अपेक्षा करता है। यह दृष्टिकोण गलत सूचना भेदभाव या हिंसा के प्रति नरमी नहीं सिखाता, बल्कि यह कहता है कि गलत विचारों का प्रतिरोध अधिक विश्वसनीय तब होता है जब वह व्यक्ति की अवमानना पर निर्भर न हो। पुस्तक की व्यावहारिक चुनौती यही है कि उत्तेजक माहौल में भी प्रतिक्रिया के बजाय विवेकपूर्ण आचरण चुना जाए। चौथा, अपने ही पक्ष को जवाबदेह ठहराना पक्षपात तोड़ने का व्यावहारिक उपाय है। ब्रूक्स ध्रुवीकरण की एक परिचित आदत पर ध्यान दिलाते हैं। लोग प्रायः अपने विचारों से असहमत व्यक्तियों की मंशा को स्वार्थी, अज्ञानी या दुर्भावनापूर्ण बताते हैं, लेकिन अपने समूह के लोगों को अच्छे इरादों वाला मानते हैं। इस प्रवृत्ति को वे मोटिव एट्रिब्यूशन असिमेट्री से जोड़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हर राजनीतिक खेमे को लगता है कि वह सद्भावना से प्रेरित है और दूसरा खेमा मूलतः बुरा है। ऐसी सोच में प्रमाण, अनुभव और नीति पर चर्चा जल्दी ही नैतिक अभियोग में बदल जाती है। पुस्तक का उत्तर असामान्य लेकिन ठोस है। ब्रूक्स पाठक से कहते हैं कि वह केवल विरोधी पक्ष के विरुद्ध बोलने में ऊर्जा न लगाए, बल्कि अपने ही पक्ष के लोगों के सामने विरोधियों की गरिमा और उचित दावों की रक्षा करे। इसका अर्थ हर आलोचना को स्वीकार करना नहीं है, इसका अर्थ है अपने समूह में फैल रही अतिशयोक्ति, अपमान और सामूहिक दोषारोपण को चुनौती देना। यह कदम कठिन है क्योंकि अपने समुदाय से असहमति सामाजिक लागत ला सकती है, फिर भी यही विश्वसनीयता पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति अपने पक्ष की गलत भाषा या अनुचित व्यवहार को भी पहचानता है, तब वह विरोधी से केवल जीत नहीं, निष्पक्षता मांग रहा होता है। इस तरह पुस्तक परिवर्तन की जिम्मेदारी हमेशा दूसरे खेमे पर डालने से बचती है। अंत में, आक्रोश की लाभकारी व्यवस्था से दूरी बनाना व्यक्तिगत और सार्वजनिक अभ्यास है। ब्रूक्स के विश्लेषण में तिरस्कार केवल व्यक्तिगत स्वभाव की समस्या नहीं है, यह एक ऐसी सार्वजनिक व्यवस्था से भी जुड़ा है जिसमें उत्तेजक टिप्पणियां, भय, अपमान और खेमेबंदी ध्यान आकर्षित करते हैं। राजनीति, टेलीविजन बहसों और सोशल मीडिया में सबसे तीखी प्रतिक्रिया अक्सर सबसे अधिक दृश्यता पाती है। इसलिए नागरिकों को यह भ्रम हो सकता है कि कठोरता ही प्रभावशीलता है और विरोधी के प्रति क्रूरता ही अपने पक्ष के प्रति निष्ठा है। पुस्तक इस धारणा को अस्वीकार करती है। ब्रूक्स के अनुसार अपमान और आक्रोश अल्पकालिक समर्थन जुटा सकते हैं, पर वे भरोसा, सहयोग और टिकाऊ समाधान नहीं बनाते। इस निदान का व्यावहारिक पक्ष पाठक की सूचना और संवाद संबंधी आदतों में है। उसे उकसाने वाली सामग्री को तुरंत साझा करने, विरोधी के बारे में सबसे बुरा मानने और हर मतभेद को पहचान की लड़ाई बनाने से बचना होगा। साथ ही उसे वास्तविक बातचीत के लिए जगह बनानी होगी जहां प्रश्न पूछना और असहमति सुनना कमजोरी न माना जाए। यह कोई त्वरित राजनीतिक नुस्खा नहीं है। इसकी सीमा भी यही है कि संस्थागत प्रोत्साहन बने रहते हैं। फिर भी ब्रूक्स का तर्क है कि नागरिकों और नेताओं के छोटे दोहराए गए व्यवहार ही उस मांग को घटा सकते हैं जिस पर आक्रोश की व्यवस्था फलती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो राजनीति, मीडिया या सोशल मीडिया की बहसों में बढ़ती कटुता से परेशान है, लेकिन मतभेदों को मिटाने वाली सरल एकता की भाषा से संतुष्ट नहीं है। नागरिक नेता, शिक्षक, प्रबंधक, कार्यकर्ता और परिवार या कार्यस्थल में कठिन वैचारिक संवाद झेलने वाले लोग इससे एक उपयोगी नैतिक ढांचा पा सकते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक असहमति को दबाने के बजाय उसे अधिक जिम्मेदारी से निभाने की कसौटी सीखता है। वह क्रोध, तिरस्कार, आलोचना और अमानवीकरण के बीच अंतर कर सकता है तथा अपने पक्ष की भाषा और व्यवहार को भी जांचने की आदत विकसित कर सकता है। बौद्धिक रूप से पुस्तक ध्रुवीकरण को केवल नीतिगत अंतर या सूचना की कमी नहीं मानती, वह भावनात्मक आदतों, सामाजिक प्रोत्साहनों और नैतिक चुनावों को केंद्र में रखती है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसका विशिष्ट पक्ष यह है कि यह केवल बेहतर तर्क, अधिक तथ्य या सभ्य भाषा की सलाह पर नहीं रुकती। ब्रूक्स सहिष्णुता से ऊंचा मानक प्रस्तावित करते हैं, विरोधी के प्रति सक्रिय सम्मान और प्रेम। यह आग्रह आदर्शवादी लग सकता है और व्यवहार में कठिन भी है, विशेषकर गंभीर अन्याय या तीखे संघर्ष के संदर्भों में। फिर भी पुस्तक की ताकत इसी चुनौती में है। यह पाठक को अपने विरोधियों को बदलने से पहले तिरस्कार को बढ़ाने में अपनी भूमिका देखने के लिए कहती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं आर्थर सी. ब्रूक्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।